नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9 Nut Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, लर्निंग डोमेन ड्रिवन डिजाइन, व्लाद खोनोनोव की सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर केंद्रित व्यावहारिक पुस्तक है। इसका मुख्य प्रश्न यह है कि किसी कंपनी की व्यावसायिक रणनीति, उसके वास्तविक कामकाज और सॉफ्टवेयर के डिजाइन के बीच सही संबंध कैसे बनाया जाए। पुस्तक डोमेन ड्रिवन डिजाइन को केवल कोडिंग पैटर्नों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि जटिल व्यावसायिक समस्याओं को समझने और उनके अनुरूप तकनीकी निर्णय लेने की विधि के रूप में रखती है। इसमें रणनीतिक डिजाइन और टैक्टिकल डिजाइन दोनों स्तरों की चर्चा है। पहले स्तर पर पाठक सबडोमेन, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट, सर्वव्यापी भाषा और टीम सीमाओं को समझता है। दूसरे स्तर पर बिजनेस लॉजिक के कार्यान्वयन, समय आधारित मॉडलिंग, आर्किटेक्चरल पैटर्न और संचार पैटर्न आते हैं। पुस्तक खास तौर पर उन टीमों के लिए उपयोगी है जो बदलते व्यवसाय, पुराने मोनोलिथ, कई टीमों या जटिल एकीकरणों से जूझ रही है। इसका उद्देश्य किसी तय तकनीकी नुस्खे को लागू कराना नहीं, बल्कि व्यापार की अनिश्चितताओं के अनुपात में डिजाइन की जटिलता चुनना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, रणनीतिक डिजाइन में कोड से पहले व्यावसायिक डोमेन को समझना। पुस्तक का केंद्रीय तर्क है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन को व्यावसायिक डोमेन की समझ से निकलना चाहिए, न कि केवल उपलब्ध फ्रेमवर्क, डेटाबेस या माइक्रोसर्विस प्रवृत्ति से। डोमेन से आशय उस ज्ञान, नियमों, प्रक्रियाओं और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों से है जिनमें कंपनी काम करती है। यदि टीम इस समझ के बिना मॉडल बनाती है तो वह तकनीकी रूप से साफ कोड लिखकर भी गलत समस्या हल कर सकती है। खोनोनोव रणनीतिक डिजाइन को इस प्रारंभिक विश्लेषण का माध्यम बनाते हैं। इसमें यह पहचाना जाता है कि कंपनी के लिए कौन सा काम वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक अंतर पैदा करता है, कौन सा काम आवश्यक मगर सहायक है और कौन सा काम सामान्य समाधान से लिया जा सकता है। इन्हें क्रमशः कोर, सपोर्टिंग और जेनेरिक सबलोमिन के रूप में देखा जाता है। यह वर्गीकरण निवेश, विशेषज्ञता और डिजाइन की गहराई तय करने में मदद करता है। हर हिस्से पर समान स्तर की इंजीनियरिंग लगाना अक्सर संसाधनों की बर्बादी है। पुस्तक जटिलता पर विचार के लिए सिनेफिन फ्रेमवर्क का भी संदर्भ देती है, जिससे टीम यह भेद कर लगे कि किसी क्षेत्र में स्पष्ट नियम पर्याप्त हैं या प्रयोग सीखने और निरंतर संशोधन की जरूरत है। इस प्रकार रणनीति और आर्किटेक्चर का संबंध व्यवहारिक निर्णयों में बदलता है। दूसरा, सर्वव्यापी भाषा और बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट से मॉडल की सीमाएं तय करना। डोमेन ड्रिवन डिजाइन में सर्वव्यापी भाषा वो साझा भाषा है जिसे डोमेन विशेषज्ञ, उत्पाद पक्ष और इंजीनियरिंग टीम लगातार उपयोग करें। इसका उद्देश्य केवल शब्दावली को सुंदर बनाना नहीं है। जब किसी शब्द का अर्थ अलग लोगों के लिए अलग हो, तब आवश्यकताएं, डेटा मॉडल और बिजनेस नियम परस्पर टकरा सकते हैं। साझा भाषा इस अस्पष्टता को सामने लाती है और मॉडल को व्यवसाय के वास्तविक अर्थ के निकट रखती है। लेकिन पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि एक ही शब्द का पूरे संगठन में एक ही अर्थ होना जरूरी नहीं। उदाहरण के लिए, किसी ग्राहक, ऑर्डर या उत्पाद की परिभाषा बिक्री, बिलिंग और सहायता प्रक्रियाओं में अलग हो सकती है। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट वह स्पष्ट सीमा है जिसके भीतर किसी मॉडल और उसकी भाषा का अर्थ सुसंगत रहता है। यह सीमा डेटा, कोड, जिम्मेदारी और टीम स्वामित्व के लिए व्यावहारिक दिशा देती है। पुस्तक का महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सबलोमिन खोजे जाते हैं, जबकि बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट डिजाइन किए जाते हैं। यानी व्यवसाय की संरचना अपने आप नहीं बताती कि कितनी सेवाएं या मॉड्यूल बनने चाहिए। टीम को परिवर्तन की दर, संचार लागत, लेन देन की जरूरत और संगठनात्मक क्षमता देखकर सीमा चुननी होती है। आरंभ में बहुत संकीर्ण सीमाएं परिवर्तन को महंगा कर सकती हैं, इसलिए व्यापक कॉन्टेक्स्ट कभी कभी अधिक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट मैपिंग से टीमों और बाहरी प्रणालियों के बीच संबंध संभालना। कई बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट बना देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वास्तविक प्रणाली में वे डेटा, घटनाओं और सेवाओं के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पुस्तक कॉन्टेक्स्ट मैपिंग को इन संबंधों को तकनीकी और संगठनात्मक दोनों दृष्टि से स्पष्ट करने का उपकरण मानती है। इसमें यह पूछा जाता है कि कौन किस पर निर्भर है, इंटरफेस का नियंत्रण किसके पास है, परिवर्तन की कीमत कौन चुकाता है और दोनों टीमों के सहयोग की प्रकृति क्या है। पार्टनरशिप पैटर्न उन स्थितियों के लिए है जहां टीमें साझा लक्ष्य के साथ निकट समन्वय कर सकती है। कॉन्फॉर्मिस्ट पैटर्न में डाउनस्ट्रीम टीम अपस्ट्रीम मॉडल को स्वीकार करती है, जो तब उपयोगी हो सकता है जब अनुकूलन की लागत लाभ से अधिक हो। ओपन होस्ट सर्विस कई उपभोक्ताओं के लिए स्थिर प्रकाशित इंटरफेस देने का विचार है। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में एंटी करप्शन लेयर शामिल है। यह बाहरी या विरासती प्रणाली के मॉडल को अपने डोमेन मॉडल में सीधे घुसने से रोकती है और अनुवाद की परत के रूप में काम करती है। इसका लाभ केवल कोड की स्वच्छता नहीं है, बाहरी शब्दावली, डेटा संरचना या नियम बदलने पर असर सीमित रहता है। पुस्तक अलग रास्ते चुनने की संभावना भी रखती है, जब एकीकरण से मिलने वाले लाभ की तुलना में उसका दीर्घकालिक बोझ अधिक हो। इसलिए कॉन्टेक्स्ट मैपिंग एपीआई सूची से आगे बढ़कर शक्ति, स्वामित्व और कपलिंग का विश्लेषण है। चौथा, सरल और जटिल बिजनेस लॉजिक के लिए अलग कार्यान्वयन पैटर्न चुनना। पुस्तक टैक्टिकल डिजाइन को रणनीतिक समझ के बाद रखती है, क्योंकि एंटिटी, वैल्यू ऑब्जेक्ट और एग्रीगेट जैसे पैटर्न अपने आप सही आर्किटेक्चर तय नहीं करते। खोनोनोव का व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि बिजनेस लॉजिक की जटिलता के अनुसार कार्यान्वयन शैली चुनी जाए, जहां प्रक्रिया सीधी हो, नियम कम हो और डेटा आधारित क्रियाएं प्रमुख हो। वहां ट्रांजैक्शन स्क्रिप्ट या एक्टिव रिकॉर्ड जैसे अपेक्षाकृत सरल पैटर्न अधिक स्पष्ट और सस्ते हो सकते हैं। हर जगह समृद्ध डोमेन मॉडल लागू करने से अनावश्यक अमूर्तन, कठिन रखरखाव और धीमी डिलीवरी पैदा हो सकती है। इसके उलट जब नियमों का जाल, स्थितियों के बीच परिवर्तन, महत्वपूर्ण इन्वेरिएंट और व्यवहारों का गहरा संबंध हो, तब डोमेन मॉडल जटिलता को व्यवस्थित करने का साधन बनता है। एग्रीगेट लेनदेनात्मक संगति की सीमा पर सोचने में मदद करते हैं, जबकि एंटिटी पहचान के आधार पर और वैल्यू ऑब्जेक्ट अपने गुणों के आधार पर अर्थ रखते हैं। पुस्तक समय के आयाम पर भी ध्यान देती है, क्योंकि कुछ डोमेन में वर्तमान स्थिति पर्याप्त नहीं होती। इतिहास, घटनाएं और निर्णय का क्रम भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसी जरूरतों में इवेंट सोर्स डोमेन मॉडल उपयोगी हो सकता है, पर वो डिफॉल्ट विकल्प नहीं है। सही चुनाव का आधार पैटर्न की लोकप्रियता नहीं, डोमेन का व्यवहार और परिवर्तन की संभावित दिशा है। अंत में मॉडलिंग कार्यशालाएं, आर्किटेक्चर और ब्राउनफील्ड अपनाने की व्यावहारिक पद्धति। पुस्तक डोमेन ज्ञान को केवल दस्तावेज पढ़कर प्राप्त मानने के बजाय सहयोगी खोज की प्रक्रिया मानती है। इवेंट स्टॉर्मिंग और डोमेन स्टोरीटेलिंग जैसे तरीकों का उपयोग व्यवसाय के लोगों और तकनीकी टीमों को एक साझा दृश्य में प्रक्रियाएं, घटनाएं, निर्णय और बाधाएं देखने देता है। इन कार्यशालाओं का मूल्य चिपकने वाले नोटों या किसी विशेष प्रारूप में नहीं है, उनका मूल्य उन छिपी धारणाओं, विरोधी परिभाषाओं और असामान्य स्थितियों को जल्दी उजागर करने में है, जो बाद में महंगे दोष बनते हैं। इसके बाद आर्किटेक्चर को मॉडल की आवश्यकताओं के अनुरूप चुनना चाहिए। लेड आर्किटेक्चर, हेक्सागोनल आर्किटेक्चर, कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन या अन्य शैली तभी उपयोगी है जब वह निर्भरता, परीक्षण और परिवर्तन को बेहतर बनाती हो। पुस्तक इन्हें अनिवार्य चरणों की सूची नहीं बनाती। यह विशेष रूप से ब्राउनफील्ड प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पुराना कोड, मौजूदा ग्राहक और सीमित समय होते हैं। वहां पूरी प्रणाली को एक साथ पुनर्लेखन करने के बजाय सबसे अधिक जोखिम या व्यावसायिक महत्व वाले क्षेत्र से शुरू करना व्यावहारिक है। स्पष्ट स्वामित्व, सुरक्षित सीमाएं और क्रमिक सुधार टीम को बिना अनावश्यक व्यवधान के डोमेन ड्रिवन डिजाइन अपनाने देते हैं। इस दृष्टि में डिजाइन का लक्ष्य आदर्श चित्र बनाना नहीं, बल्कि बदलती समझ के साथ प्रणाली को विकसित करने योग्य रखना है। निष्कर्ष में, लर्निंग डोमेन ड्रिवन डिजाइन उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, टेक लीड्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोडक्ट सहयोगियों और इंजीनियरिंग प्रबंधकों के लिए सबसे उपयोगी है, जिन्हें जटिल व्यावसायिक नियमों वाले उत्पादों पर निर्णय लेने होते हैं। यह उन पाठकों के लिए भी प्रासंगिक है जो डोमेन ड्रिवन डिजाइन को केवल एग्रीगेट, रिपोजिटरी और एंटिटी के स्तर पर जानते हैं, पर यह नहीं समझते कि इन पैटर्नों का उपयोग कब और क्यों किया जाए। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि वह तकनीकी संरचना को व्यावसायिक प्राथमिकताओं, टीम सीमाओं और परिवर्तन की अनिश्चितता से जोड़ती है। पाठक सब्लोमेन का विश्लेषण, साझा भाषा का निर्माण, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का डिजाइन, एकीकरण संबंधों का मूल्यांकन और उपयुक्त कार्यान्वयन शैली का चयन अधिक स्पष्टता से कर सकता है। इसकी बौद्धिक उपयोगिता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकप्रिय वास्तुशिल्प विकल्पों को स्वयं सिद्ध नहीं मानती। माइक्रोसर्विस, इवेंट सोर्सिंग या जटिल डोमेन मॉडल को हर समस्या का उत्तर मानने के बजाय पुस्तक संदर्भ आधारित निर्णय पर जोर देती है। इसी कारण यह केवल पारंपरिक पैटर्न कैटलॉग से अलग दिखती है, जहां कई डोमेन ड्रिवन डिजाइन पुस्तकें रणनीतिक और टैक्टिकल पक्षों में से किसी एक पर अधिक झुकती है। वहां खोनोनोव दोनों को एक सतत निर्णय प्रक्रिया में रखते हैं। पुराने मोनोलिथ से जूझती टीमों के लिए इसका क्रमिक अपनाने वाला दृष्टिकोण विशेष रूप से उपयोगी है। यह पुस्तक तैयार नुस्खे नहीं देती, बल्कि सही प्रश्न पूछने और व्यापार के अनुरूप डिजाइन विकसित करने की अनुशासक पद्धति देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ब्लैक खोनोनोव, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।